वह अना अख्तार तू का, और मैंने तुम्हें चुन लिया। सुभान अल्लाह, ये है नबुवत का मिलना कि मैंने तुम्हें सिलेक्ट कर दिया। तो अख्तर होता है इख्तियार करना, बहुत सारी चीजों में से जो बेस्ट चीज हो ना उसको चूज कर लेना, इसको कहते हैं। तो ये कितना बड़ा इजाज मिला, लेने गए थे आग, मिल गई नबुवत, सुभान अल्लाह। तो मैंने तुम्हें चुन लिया, फस्तमे लिमा यूहा, तो गौर से सुनो, सिर्फ सुनना नहीं है, इस्मा नहीं, इस्तमिया, ता जब बीच में आ गई, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब एक लफ्ज के अंदर उसके लेटर्स ज्यादा हो जाते हैं तो उसका माना भी ज्यादा बन जाता है, तो गौर से सुनने के लिए इस्तेमा होता है, जो आप तरफ वही की जाती है उसको गौर से। ये भी इल्म का अदब है कि जब बात बताई जाए, जब इल्म लेने के लिए आप बैठ जाएं तो गौर से सुने। इसीलिए कुरान पाक के भी फरमाया ना अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में, वाहिदा कुरियल कुरान फस्तमीउ लहू वअन्सितु, जब कुरान पढ़ा जाए गौर से सुनो और खामोश रहो। खामोशी होगी तो गौर से सुना जाएगा ना, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पे रहम किया जाए। तो ये नहीं कि आप कुरान चला के आप फोन पे बातें कर रहे हैं, आप कुरान चला के घर में बातें कर रहे हैं, आप कुरान चला के, आप गौर से सुने, खामोश रहें। ये अदब सिखाया गया कुरान का, जो कुरान में ही सिखाया गया लोगों को। जब ये इल्म की जब बात होती है ना, तो अदब ये नहीं होते कि ये, इसके सुनने का भी अदब है, इसको सीखने का भी अदब है। गौर से सुनने के लिए आपको फोकस होना पड़ता है, और अगर आप कहीं और ही पहुंचे में बैठे हुए क्लास में, फिजिकली दिमाग कहीं और घूम रहा है, आज पकाना क्या, आज बच्चों को स्कूल से आना है, अच्छा कितने बजे किसकी छुट्टी होनी है, तो ये क्या है? ये गौर से सुनना है, इस्तेमा है। कहा गया कुरान के लिए भी इस्तेमा चाहिए, यहाँ पे अल्लाह ताला अपने नबी से फरमा रहे हैं, ऐ नबी के आप गौर से सुने जो आपकी तरफ वही की जाती, क्योंकि बंदे का फोकस ही नहीं है ना तो वो सीख नहीं सकता। आपका बच्चा क्लास में जाते हैं, आप चाहते हैं कि वो फोकस्ड रहे, तभी उसको टीचर की बात समझ आएगी ना। इससे आप बच्चे की बात से सोचें तो फिर आपको समझ आए शायद। और अक्सर स्कूल्स के अंदर वो फोन उनसे ले लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्लासों में आपने फोन नहीं लेकर जाना, बोलो, पता है कि बच्चे फोकस नहीं कर सकेंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन हम कुरान की क्लास में फोन साथ रखते हैं, ताकि ये ना हो कि कोई कोई टेक्स्ट जो है मेरा मिस हो जाए, क्या पता कि कोई इंपॉर्टेंट इतना टेक्स्ट हो, और फिर फोन साथ अगर बजे भी तो फिर भी सुनना हमने जरूरी है। उसके साथ बातें बातें करके फिर जब वापस क्लास में आप आएंगे तो आपको क्या समझ आएगी? दो चार आयतें तो वैसे ही गुजर चुकी होंगी, और वैसे भी जहन ही नहीं फोकस होगा, पहले तो उसकी बात के ऊपर ही जहन रहेगा कि जो अभी बातचीत तो उसके साथ हुई। तो हम खुद को भी चेक करें कि क्या हम कुरान की मजलिस में या कुरान सीखने के लिए जब बैठे हैं तो हम क्या फोकस्ड होते हैं, क्या हम इस्तेमा करते हैं, या सिर्फ समा है, बस कान से इधर से जा रही है उधर से निकल रही। देखिए, एक हेयरिंग होता है, एक लिसनिंग होता है। जब भी आप किसी को वाकई चाहते हैं कि वो आपकी बात को तवज्जो दे और फोकस करे, तो क्या कहते हैं? हेयर नहीं कहते, कहते हैं लिसन टू मी। बच्चे को भी कहते हैं ना, लिसन टू मी, सुनो मेरी बात। अब उर्दू में तो सुनो सुनो दोनों के लिए ही होता है, लेकिन अरबिक में, इंग्लिश में इसके लिए अलग अलग वर्ड्स हैं। एक आवाज कान में जा तो रही है, लेकिन जा रही है और वो कहाँ जा रही है अल्लाह जाने, और दूसरी है वो जो जहन में जाती है, जिसको आप बिठाते हैं जहन में। तो अगर वाकई इल्म लेने के लिए आप सीरियस हैं तो इसका ये अदब आपको सीखना होगा। डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें, कोई हरज नहीं है, कोई, आपको यकीन करें कहीं आपको करोड़ों का नुकसान नहीं होगा अगर आप इन क्लास के आवर्स में अपने फोन को साइलेंट पे करके एक साइड पे कर दें कि आपकी नजर ना जाए। हमारा तो हाल ये है कि फोन, हमारी नमाज में भी हमने फोन सामने रखा होता है कि अगर कोई टेक्स्ट आए तो सामने सज्दे की जगह पे पढ़ाओ, उस पे नजर भी पड़ जाए ना, वो साथ साथ वो भी पढ़ लो। तो कुरान पढ़ते वक्त तो कुछ जो है एहसास ही नहीं होता कि, जबकि हम सूरह आराफ में पढ़ चुके हैं कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो तुम गौर से सुनो, और जब टेक्स्टिंग है तो वो खामोशी है, या वो भी बोलना, वो हाथों से बोलना। अगर अपने ऊपर रहम चाहते हो कि अल्लाह की रहमत हो तुम्हारे ऊपर, तो ये अदब है कुरान का। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी अनल्लाह, बेशक मैं अल्लाह हूं। अल्लाह अकबर, क्या बात होगी वो जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया होगा मूसा अलैहिस्सलाम को। कई लोग तो दुआएं करते हैं और तरसते हैं इस बात को कि वो कौन सा दिन होगा जब जन्नत में जाएंगे और अल्लाह ताला तेरा दीदार होगा। अल्लाह तू अपना दीदार हमें करा देना, उनकी दुआओं में होता है अल्लाह ताला से बात हो जाए, अल्लाह ताला के साथ हम कलामी का शर्फ मिल जाए। और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के साथ हम कलामी का शर्फ दुनिया में ही मिल गया, इसी जिंदगी में मिल गया। हाँ देख नहीं सके मगर कलाम कर लिया अल्लाह ताला ने, यही कितनी बड़ी बात है। तो पहले आया था इन्नी अना रब्बुका, अब है इन्ना नी, इसके अंदर और ज्यादा ताकीद है, मैं ही हूं, और ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया ये। और अनल्लाह, अल्लाह ताला ने अपना तारुफ अल्लाह के लफ्ज से कराया, लफ्ज जलाला, जिस कोई और नहीं लफ्ज यहाँ पे आया, कोई और नहीं नाम आया, अनर रहमान या अनर रहीम या अनल गफूर, ऐसे नहीं, अल्लाह। तो फिर जाहिर है इस नाम का एक असर है। और ला इलाहा इल्ला अना, नहीं कोई इलाह मगर मैं, फअबुदनी, बस मेरी इबादत करो। और ये वाली वो आयत है ना जिसके ऊपर जाके फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमा दिया कि बस अब मैं इस्लाम लाने के लिए रेडी हूं। इतनी ही आयत ने उनके दिल पे क्या असर कर दिया, सुभान अल्लाह। मैं सोचती हूँ हम तो कुरान पढ़ पढ़ के भी वैसे ही रह जाते हैं। सोचें कुफर के जिहालत के अंधेरों से निकल के इस्लाम की रोशनी में लाके खड़ा कर दिया। हम इस्लाम में होते हुए भी ईमान को बढ़ा नहीं पाते, हम इस्लाम में होते हुए भी इबादत और इताअत के अंदर नहीं बढ़ पाते। तो इसमें अल्लाह ताला ने अपना तारुफ भी कराया और ये भी कि मैं हूं अल्लाह, मेरे सिवा कोई इलाह नहीं। क्या मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात नहीं पता थी? पता ही थी ना, तो अंबिया ने तो कभी भी शिर्क नहीं किया, फिर क्यों बताया जा रहा? इसलिए कि ईमान को भी हमेशा दोहराते रहने की जरूरत होती है, इसको भी आबियारी की जरूरत, ग्रो करने की जरूरत होती है, इसको भी सींचने की जरूरत होती है, इसको भी सीखने की जरूरत होती है। ऐसे नहीं होता कि हम बस बॉर्न मुस्लिम हैं तो बस ईमान ही ईमान है हमारा, कोई मसला ही नहीं, कोई मसला नहीं, और मरते दम तक ईमान चल रहा है हमारा, ना कुछ सीखा ना कुछ पढ़ा ना कुछ जानते हैं कि इलाह क्या होता है, अल्लाह कौन है, उसकी पहचान क्या है, उसको इला समझना क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, कुछ भी नहीं पता। ला इलाहा इल्लल्लाह, बस वो जो कारी साहब ने बचपन में पढ़ा दिया था ला इलाहा इल्लल्लाह, बस वो पता है, वो पढ़ लिया करो इस तरह तस्बीह पे पढ़ लिया करो, ज्यादा ज्यादा लोग इसके इसके ऊपर तवज्जो दे देते, इससे आगे क्या है, इसको सीखने वाले बने। अब्दुल्ला बिन रवाहा जो थे बड़े ईमान वाले सहाबी, मस्जिद नबवी में जब आते थे ना तो सहाबा के पास जाके बैठते थे और फरमाते थे आओ कुछ देर के लिए अपना ईमान ताजा कर लेते हैं। देखिए आप, आओ कुछ देर के लिए ईमान ले आए, वो कहते थे कुछ देर के लिए ईमान ले आए, यानी अपने ईमान को रिवाइव कर ले, उसको नया कर ले, तरोताजा कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया अपने ईमान को ताजा करते रहा करो, सहाबा से फरमाया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते थे, जिनका दिन रात और क्या था, उनका तो काम ही यही था, उनका तो मजलिस ही वो थी, उनकी तो बातें ही वो ही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे अपने ईमान को ताजा कर लिया करो। हमें क्या सोचे, अल्लाह अकबर, हम तो एक हफ्ते में एक क्लास लेके भी ना, अब बहुत बड़ा हमने मार्का मार दिया, बहुत बड़ा एहसान हो गया हमारा, हमने क्लास ले लिया, हम तो क्लास में एनरोल हो गए, रजिस्टर कर लिया। वो बहुत सारे लोग इसके अलावा ही अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते हैं कि हमें तो जरूरत ही नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं, जिन्होंने इतना थोड़ा सा कदम उठा ही लिया वो इसको ही इतना बड़ा समझ लेते हैं कि हम तो पता नहीं किधर पहुंच गए हैं, आप वो दूसरों से हम कितने ऊपर चले गए, नेकी में तो हमारा कोई सानी ही नहीं है, मैं हूं जो क्लासे लेती हूँ, मैंने हूँ ये वाला कोर्स लिया हुआ। भाई सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने ईमान को ताजा कर लिया करो, तो मैंने और आपने एक एक क्लास लेके कौन सा तीर मार दिया? हमारे इर्द गिर्द तो जिस कदर टेम्पटेशन है, जिस कदर कशिश, जितनी अट्रैक्शंस हैं, हमें तो पता नहीं कितना ज्यादा जरूरी है कि हम अपने ईमान को ताजा करने के लिए एफर्ट करें, कोशिश करें, मगर ईमान का पौधा सूखा हुआ पड़ा हुआ है, मुरझाया हुआ पड़ा हुआ है, हमें पता ही नहीं, हमें कोई एहसास ही नहीं। आप अच्छी तरह पता है, जिस वक्त आपका ईमान ताजा होता है ना, आपको अच्छी तरह पता चल जाता है आपका दिल आपको बताता है, या आज ईमान ताजा हुआ हुआ है मेरा, और आपको अच्छी तरह पता है जिस वक्त आपका ईमान मुरझाया हुआ होता है। ये ना कहें कि आपको नहीं पता, का 4 दिन आप कुरान से जरा दूर रहते हैं, उसके बाद फिर अगले जुमे तक क्या होता है, मुरझाना शुरू हो जाता है। और कोई एक आध महीना हो जाए तो फिर तो बिल्कुल ही पता नहीं किधर चला जाता है, ख्याल भी नहीं आता। तो हैरत की बात है ना ये कि सहाबा को आप सरसलम फरमा रहे हैं। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल्ला हम कैसे अपने ईमान को ताजा रखें? फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह से, यानी इसके ऊपर गौर और फिक्र करना, इसको सीखना, इसको समझना। और कुरान कहता है कि इल्म हासिल करो इसका, आलमू कहता है इसके लिए, इल्म लो इसका, ये ला इलाहा है। तो जो कुरान के पास आया वो तो जाहिर हो उसको पता ही होगा, लेकिन फरमाए इल्म लो, इसको सीखो, सीखना जरूरी है। तो ये भी मुरझा जाता है, इसको ताजा रखना जरूरी होता है। और टाइम टू टाइम, ये नहीं कि एक दफा ताजा कर लिया अब जिंदगी भर के लिए इसने ताजा ही रहना, नहीं, फिर आप तवज्जो नहीं देंगे, फिर मुरझाने लग पड़े, फिर आप इसको ताजा नहीं रखने के लिए कोशिश करेंगे तो फिर कुछ डेड हो जाता है। बाज दफा इतनी दूर निकल जाते हैं, आप अपने घर का पौधा ही देखें, आप अरसे दराज तक उसकी तरफ तवज्जो ना दें, उसको पानी ना दें, उसको धूप ही ना पड़े, तो उसका क्या हाल हो जाएगा? ईमान भी इसी तरह हो जाता है। और फिर सोचें कि फिर ऐसे ही ईमान के साथ मैं और आप सोचते हैं कि हम आखरत में भी आराम से चले जाएंगे, वहां पुल सिरात भी हमारा क्रॉस हो जाएगा, बिजली की तेजी से हमने गुजर जाना है, क्योंकि हम दुआएं जो मांगते हैं बस बिजली की तेजी से हम गुजर जाएंगे, जन्नत में भी दाखिल हो जाएंगे, मसला ही नहीं। इस तरह के ईमान के साथ जो ऐसे बुझा पड़ा है, गिरा पड़ा है। अल्लाह अकबर। तो फरमाया, फाबुदनी, बस मेरी इबादत करो, वाकई में सलात अली जिक्री, और नमाज को कायम करो, क्यों? मेरे जिक्र के लिए। अच्छा, इसका मतलब है कि नमाज को पढ़ो किस लिए? मुझे याद करने के लिए। पहले आया इबादत, उसके बाद आया नमाज। तो हम तो नमाज पढ़ने वाले को समझते हैं बड़ा इबादत गुजार है, जो पांच हैरत होती है कई दफा लोग कहते नमाज पंचगाना की पाबंद है। वो हमारे वहां पे अखबारों में ना जो रिश्तों का सेक्शन होता था उसके अंदर लिखा होता था कि सोमो सलात की पाबंद। भाई सोमो सलात की पाबंद तो एक मुसलमान को वैसे ही होना है, उसके बगैर तो मुसलमान ही नहीं है। इसको बहुत बड़ी चीज समझा जाता है कि नमाज पढ़ ली ना, रोजा रख लिया, तो उसकी पाबंदी हो गई, ये बहुत इबादत में ऊपर है। पता नहीं यहाँ पे कहा गया इबादत करो मेरी और नमाज कायम करो, इसका मतलब इबादत का वसी मफहूम है, उसमें नमाज रोजा तो आ ही जाता है, लेकिन तमाम हकूकुल्ला, हकूकुल इबाद, सोना जागना खाना पीना हर चीज अल्लाह की मर्जी से करना, उसकी गुलामी करना 24/7, उसकी गुलामी करना, ये है इबादत। वरना अगर इबादत सिर्फ नमाज होती तो वो तो हम 2 मिनट में मुसल्ले पे खड़े होते हैं, नमाज हो गई, दिन में 5 दफा नमाज पढ़ने, हो गई हमारी इबादत। ये नहीं है, नमाज तो बेयर मिनिमम है, नमाज तो वो है कि जहां से स्टार्ट होता है अभी दीन, नमाज तो वो है कि जिसके बगैर फिर दीन ही नहीं है, तो समझ लें पिलर्स है, कह लें बुनियाद कह लें, उसके ऊपर तो भी इमारत खड़ी होनी थी, आपने उसको ही सारा कुछ समझ लिया, बुनियादों को। इबादत को अलग कहा गया, नमाज को अलग कहा गया, वरना अगर नमाज ही सिर्फ इबादत होती तो ये दोनों चीजें अलग अलग ऐसे नहीं बयान करने की जरूरत थी। तो अलग अलग इसलिए किया गया, एक तो नमाज की अहमियत भी इससे पता चलती है, नमाज की कितनी अहमियत है कि इबादत करो और उसमें नमाज को अल्लाह के जिक्र के लिए करो, तो अल्लाह के बंदे बन के रहो, अल्लाह की गुलामी में आ जाओ, ठीक है? और इसके लिए रिमाइंडर क्या होगा? नमाज। नमाज में आपका कनेक्शन अल्लाह ताला से बन जाता है, 5 दफा आप कनेक्ट करते हैं अपना नंबर कनेक्शन, अगर भूल भी गया था, अभी कुछ चीजों में लग गए थे कि भूल गया था, तो जब नमाज के लिए खड़े हो गए फिर से रिमाइंडर आ गया कि मुझे अल्लाह के आगे झुकना है, मैं उसकी बंदी हूं, मैं उसकी गुलाम हूं, ये रिमाइंड करा रही है हमें बार बार, दिन में 5 दफा रिमाइंडर आ रहा है। तो नमाज को ये ना समझें कि नमाज हम पढ़ते हैं तो हम बहुत नेक हो गए या हम बड़े इबादत गुजार हैं। और ये एक हदीस से पता चलता है, बड़ी इंटरेस्टिंग हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम की कड़ियां एक एक करके टूटती चली जाएंगी। यानी कम क्या मतलब टूटती चली जाएंगी कि लोग एक एक करके इस्लाम के तरीकों को इसको छोड़ना शुरू कर देंगे। एक कड़ी टूटेगी तो लोग दूसरी को थाम लेंगे नीचे वाली, और फिर वो दूसरी टूटेगी तो फिर तीसरी को नीचे वाली को थाम लेंगे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि टूटने का क्या मतलब है। फरमाया सबसे पहली कड़ी जो टूटेगी वो ये है कि कानून जो है वो अल्लाह के कानून के अलावा दूसरे का कानून आ जाए, गैर अल्लाह का कानून आ जाए। तो समझ लेना इस्लाम की पहली कड़ी टूट गई, ठीक है, यहां से इस्लाम शुरू होता है। और आते आते आखिरी कड़ी कौन सी है? फरमाया आखिरी कड़ी है 5 वक्त की नमाज। कि जब बस कोई नमाज सिर्फ पढ़ता है ना तो ये दीन की आखिरी कड़ी पे, आखिरी स्टेज पे है, जब उसने सारा कुछ छोड़ दिया, सिर्फ नमाज को पकड़ के रखा। पर हम इसको सारा का सारा दीन समझ लेते हैं कि बस नमाज पढ़ ली, मेरा दीन ही मुकम्मल है, मैं सोम सलात की पाबंद हूं। इसका मतलब इसको किसी ने छोड़ दिया ना तो वो तो दीन से ही निकल गया, वो आखिरी कड़ी भी टूट गई। लेकिन जिसने पकड़ा हुआ भी वो बस एंड पे है, इससे ऊपर बहुत कुछ है जो करना है, समझ आई? तो फरमाया ये इबादत करो, मेरी मेरी गुलामी करो और नमाज को कायम रखो। अब आप देख लें नमाज का कितनी दफा जिक्र आ गया, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो है रब्बी जालनी मुकीम सलात, तो मुझे नमाज को कायम करने वाला बना दे। और फिर आपने इस्माईल अलैहिस्सलाम का देखा कि वो भी अपने घर वालों को नमाज की पाबंदी का हुक्म देते, सूरह मरियम में पढ़ा है ना हमने। ईसा अलैहिस्सलाम ने जब बात की तो सबसे पहली जो बात की थी उसके उस जो सबसे पहली बातें की थी गोद में माँ की, उनमें भी नमाज का जिक्र है कि मुझे नमाज की नसीहत। तो इतना पैगंबरों को ये चीज की बात है, तो आप बताएं कि हमारे लिए नमाज कितनी जरूरी चीज है, इसके बगैर तो ईमान ही नहीं है। तो हमारे लिए नहीं, सिर्फ पिछले पैगंबरों में भी नमाज थी। अब ली दिक्री, मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो, यानी नमाज एक जरिया है जिससे अल्लाह ताला को याद किया जाए। वला जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र बड़ी चीज है। तो अल्लाह ताला को याद करना, उसके लिए नमाज पढ़नी है। जिक्र सिर्फ ये नहीं है कि तस्बीहात पढ़नी, यानी इतनी तस्बीहां इसकी कर ली इसकी कर दी। नमाज एक बेहतरीन जिक्र का जरिया है। अच्छा, अब हम जिक्र किसको समझते हैं? ये तस्बीह कर ली, ये जिक्र है। जिक्र असल में याद को कहते हैं। वो अधूरा जिक्र है कि जो बस तस्बीह करके बस ये समझ लिया। मुकम्मल जिक्र ये कि इंसान के दिलो दिमाग में किसी की याद समा जाए, वो मुकम्मल जिक्र है। और उसके लिए नमाज पढ़नी है, ठीक है। कुरान भी हम उसके लिए पढ़ते हैं, तस्बीहात भी इसीलिए करें कि एक याद आ जाए किसी की और दिल में समा जाए वो याद। दुआएं भी याद हैं। तो जब बंदा नमाज नहीं पढ़ता ना तो अल्लाह की याद से दूर हो जाता है। तो जब नमाज पढ़े तो उसमें याद होनी चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि पूरी नमाज खत्म हो जाए और उसमें अल्लाह की याद ना आए, क्योंकि मुनाफिकीन के बारे में आता है सूरह निसा में कि वो अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं नमाज में। अल्लाह ताला हमें माफ कर दे, अल्लाह हमें माफ कर दे और हमें मुनाफिकीन में ना शामिल फरमाना कि वो थोड़ा याद करते हैं। और हमारी तो बाज दफा नमाज अल्लाह अकबर से शुरू हुई और सलाम भी फेर दिया तो एक दफा भी नहीं अल्लाह याद आता। वो कैसी नमाज है, सारी नमाज खत्म हो गई और दिल में एक दफा भी उसकी याद ना आई। तो हमने तो याद करने के लिए ही तो पढ़नी थी, वो याद ही नहीं है तो फिर पर्पज ही नहीं सॉल्व हुआ। जब मुसल्ले पे खड़े हो तो एक दफा जहन में लेकर आया करें कि मैंने अल्लाह को याद करना है, इसीलिए हर डिस्ट्रैक्शन को दूर करते। तो नंबर वन ये कि नमाज से इबादत शुरू होती है, समझें। नंबर टू ये कि नमाज अल्लाह की याद का जरिया है। नंबर थ्री ये कि कभी भी इंसान अल्लाह ताला को भूला हुआ हो और उसको याद आ जाए कि मेरा एक रब है ना जो मेरा मालिक है, या मेरे से कोई गलती हो गई है तो मेरा एक रब है ना जो मुझे माफ करने वाला है, तो उसको चाहिए कि वो नमाज पढ़ ले, क्योंकि कहा गया ली जिक्री। और नंबर फोर ये कि ये नमाज की अहमियत बयान होती है यहाँ पे अलग से जिक्र करने से। तो अल्लाह ताला को जो याद करना, उसको उसकी मदद हासिल करना, उससे दुआ करना, उस ये सारी चीजें एक नमाज के अंदर आ जाती है। देखिए नमाज के अंदर तस्बीह भी आ गई, नमाज में दुआएं भी आ गई, नमाज में कुरान भी आ गया, सारी चीजें एक में मिल गई, ठीक है। तो जब दिल घबराने लगे, जब परेशानी हो, तो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन नमाज की तरफ भागते थे, तो फिर नमाज के लिए खड़े हो जाया करें, अल्लाह को याद किया करें, अल्लाह ताला से कलाम किया करें नमाज में। तो नमाज को इस तरह से भी समझे कि अल्लाह ताला से मुलाकात है। और एक और भी माना बाज मुफस्सरीन ने ली दिक्री का लिखा है कि अगर तू ये चाहता है कि मैं तुझे याद करूं, ताकि याद के लिए, मेरी याद के लिए, यानी मैं तुझको याद करूं, तो तुम नमाज पढ़ा करो। ये भी एक बाज ने मफहूम लिया। और जब देखें वैसे भी जब आप अल्लाह को याद करेंगे तो वो आपको याद करता है ना, आप महफिल में अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह ताला आप इससे बेहतर मजलिस में, वहां पे फरिश्तों की मजलिस में आपको याद करता है, सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर कि फरिश्तों में हमारा जिक्र होने लगे, वो आसमानों पे हमारा नाम लिया जाए। तो कहते हैं जरा सा टीवी पे किसी का नाम आ जाए ना, या उसमें अखबार में किसी का नाम छप जाए या कहीं आ जाए, लोग इतना खुश होते हैं, उस अखबार को संभाल संभाल के रखते हैं, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है देखें, और फलां प्रोग्राम में आपको पता है उसमें उन्होंने मेरा नाम लेना है। नाम की हमें बड़ी फिक्र होती है ना, क्लास में हमारा नाम लिया जाए, नाम लेके हमारा बताया जाए कि हमने कितने अच्छे कारनामे किए या हमारे कितने नंबर अच्छे आए हैं, तो इस नाम के लिए हम कितनी कोशिशें करते हैं, आसमानों पे हमारा नाम हमारा रब ले और फरिश्ते सुने, सुभान अल्लाह। जब हम मजलिसों में अल्लाह को याद करें तो तब हमारा नाम वहां पे मजलिस में लिया जाएगा, जब हम अकेले में अल्लाह को याद करें तो वो अकेले में हमें याद करेगा। याद तो बड़ी चीज है, बड़ी खूबसूरत चीज है याद, तो याद भी कभी करना है, सिर्फ दाने तस्बीह के फेंकने नहीं है, और सिर्फ बस नमाजें ऐसी खाली नहीं पढ़नी, ये खाली खोखली नमाजें हैं अगर इनमें याद नहीं है। और याद तो इंसान उसी को करता है जो उसको प्यारा होता है, ऐसे थोड़ी किसी को याद करते हैं, और जो जितना प्यारा होता है उसकी याद भी उतनी ही आती है, आती नहीं है सताती है फिर तो कहते हैं इंसान के कब मुलाकात होगी उससे, जिसको अल्लाह ताला से प्यार हो ना, देखना है ना अगर अल्लाह से कितना प्यार है तो देखिए कितना याद आता है, कितनी उसकी याद सताती है और कितनी ये मोहब्बत है कि कब उससे मुलाकात होगी, तो आराम से पता चल जाएगा। अभी अब बोलते रहे हम, हमें अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, हमें बड़ी ऐसे है, हमें रसूल से मोहब्बत, और गुलाम रसूल, और मैं अल्लाह की गुलाम, और हमें बस ये नाम रख देने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये कहने तो बड़े आसान है, नमाज बड़ी मुश्किल लगती है, अल्लाह को याद करना मुश्किल लगता है, तो फिर कोई मोहब्बत के दावे झूठे ही हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़े मिशन पे जा रहे थे, तो उनको सबसे पहले ईमान बिल्ला ताजा कराया गया और अल्लाह की याद का हुक्म दिया गया। देखिए इसका मतलब है कोई भी अहम काम करना हो तो अल्लाह की मदद ही है, उसको याद करना चाहिए। उसके बाद ईमान बिल आखिरा, इन्न साअत आदियतुन, बेशक कयामत जो है वो आने वाली है, कयामत का दिन आने वाला है, और जो चीज आने वाली हो ना, वो जिसका पता चल जाए कि हाँ मसलन है, आपको पता चल जाए गाड़ी चल चुकी है, ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है तो अभी आई के अभी आई, तो उसका भी एक वक्त मुकर्रर है। जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया वो आने वाली है तो फिर क्या शक रह गया। अकादु उख्फीहा, करीब तो है कि मैं छुपा लूं उसको। अल्लाह ताला ने कलीम को फरमाते हैं कि करीब है कि मैं इसको छुपा लूं, यानी कि इसको, इसके इल्म को, कि मैं इसके इल्म को छुपा लेता, लेकिन अल्लाह ताला ने इसका सिर्फ वक्त छुपाया कि किस वक्त आनी है, बाकी सब कुछ बता दिया। क्यों बता दिया? ये भी इंसान पे बहुत बड़ी उसकी रहमत है कि उसने ये बता दिया कि देखो एक दिन है जिस दिन मैंने तुम्हें खड़ा करना है, उठाना है, तुमसे सवाल करना है, उस दिन ये होगा। सारे हालात उस दिन के बता दिए, जन्नत है, जहन्नुम है, पुजरात है, उस पे से लोग ऐसे गुजरेंगे, ऐसे होगा, ऐसे होगा। वरना वो चाहता तो हमें कुछ भी ना बताता, हमें वैसे ही उसके ओबीडियंट होना चाहिए था, वैसे ही उसकी फरमाबरदारी करनी चाहिए थी, क्योंकि उसने हमें पैदा किया है, वैसे ही उसके किसी हुक्म को नहीं तोड़ना चाहिए था, क्योंकि उसके हमारे पर एहसानात है। वो ना भी बताता और फिर उसके बाद मर जाते तो एक दिन हमें खड़ा कर देता और कहता आप बताओ कि क्या तुमने किया। तो हमें तो एक सरप्राइज हो जाता, शॉक्ड रह जाते, तो हम कहते अच्छा हमें तो पता ही नहीं था। तो पता नहीं था तो कोई बात नहीं, तुम्हें तो वैसे ही अल्लाह की माननी चाहिए थी ना, तो अल्लाह ताला चाहता तो इस तरह छुपा लेता, ना ही बताता किसी को भी, और सरप्राइज दे देता। लेकिन उसकी रहमत है कि उसने ये बता दिया ताकि इंसान कॉन्शियस होके, वैसे देखें जो एक अल्लाह ताला के जो एहसानात है ना हमारे पर, वो इतने ज्यादा हैं कि वैसे ही हमें उसके आगे झुके रहना है। लेकिन अब कयामत का इल्म आने के बाद और ज्यादा इंसान कॉन्शियसली लाइफ गुजारे कि जी मैंने हिसाब देना, जी मुझे, मैं बोलूंगी तो हिसाब होगा, मैं देखूंगी तो हिसाब होगा, मैं जो सुनूंगी उसका हिसाब होगा, मैं जो खर्च करूंगी उसका हिसाब होगा, मैं जो पहनूंगी उसका हिसाब होगा, मैं जहां जाऊंगी उसका हिसाब होगा, मेरे एक एक कदम का हिसाब होना है, मेरी एक निगाह का हिसाब होना है, मेरी एक एक सोच का हिसाब होना है, मैंने जो मुंह में डालना है निवाला उसका हिसाब होना है, मुझे सब कुछ का तो मुझे हिसाब देना है। तो वो फिर और ज्यादा केयरफुल जिंदगी गुजारता है। तो क्या इसके बगैर नहीं गुजारनी थी? कयामत ना भी होती तब भी ऐसे ही गुजारनी चाहिए थी, लेकिन ये अल्लाह एहसान है कि उसने बता दिया। सिर्फ टाइमिंग नहीं बताया, ये उसके राज है। और अकादु उख्फिया, ये जुमला मोतारिजा है, यानी मैंने आपको बताया था जो बीच में एक बात कह दी जाती है, मैं बार बार नहीं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगी, बस मैंने आपको ये बता दिया क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ। लेकिन ले तुझा इससे आगे, इन नसात आतियातुन लितुजजा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसा, वो कयामत आने वाली है। सा मतलब क्या? सा का मतलब वो घड़ी, वो मुकर्रर वक्त, और सा का लफ्ज कुराने पाक में कयामत के लिए आता है। तो वो घड़ी आने वाली है, वो सात आने वाली है जिस दिन अल्लाह ताला ने हिसाब किताब के लिए, लितुजजा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसा, ताकि हर नफ्स को जो उसने कोशिशें की हैं, मेहनतें की हैं, भाग दौड़े की हैं, उसका बदला दिया जाए। और फिर बात बीच में एक बात कर दी गई अकादुफी का, अल्लाह चाहता तो उसको, मैंने आपको पहले भी ये बताया था ना इस तरह कि मैं कहूँ कि झूठ बहुत बुरी चीज है, झूठ बहुत बुरी चीज, और मैं तो झूठ नहीं बोलती, बीच में ये बात एक ऐड करती, ये इससे मुतल्लिक नहीं थी, एक तरह से मुतल्लिक है लेकिन इस तरह से मुतल्लिक नहीं थी, बाकी लेक्चर चल रहा था उसके बीच में ये, या उसके बीच में आपको कहा जाए जी आप बैठ जाए, आप तो नहीं झूठ बोलते इस तरह से करके, तो वो एक बीच में बात ऐसे। तो अल्लाह ताला चाहता तो उसको छुपा देता, लेकिन ये किस लिए आ रही है, किस लिए? ताकि हर नफ्स को जो उसने कोशिश ये की उसका बदला दिया जाए। तो आप देखनी चाहिए ना फिर कि हमारी कोशिश क्या है, मेरी कोशिश क्या है, किसके किस किस चीज की मैं कोशिशें कर रही हूँ, किस चीज में भाग दौड़ रही, सारा दिन तो भागती दौड़ती रहती हूँ, किधर को भाग दौड़ रही, उसी का बदला मिलना। ऐसे नहीं होता कि आप गंदम बोएं, बीज गंदम का डालें तो ऊपर से चावल उग जाए उस खेत में, ऐसे कब होता है? कभी देखा आपने? आप जॉब होए तो वो कुछ और ही निकल के आ जाए, कपास निकल के आ जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो जो कोशिश करेंगे, जो बोगे वो काटोगे, ठीक है, जो आज कोशिश होगी उसी का बदला वहां मिलना है। कुछ सरप्राइज नहीं हो जाना कि यहां तो हम वैसी जिंदगी गुजारें जैसी काफिर गुजारते हो, और वहां जाके हमारा साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिल जाए और सहाबा का मिल जाए। यहां पे अगर हम मुनाफिकों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं और उनके कैरेक्टर से हम ज्यादा करीब हैं, और वहां जाके बहुत ईमान वाले और साबिकून और अव्वलून के अंदर हम उसमें भागे जा रहे हो जन्नत में, ऐसे नहीं है। जो जिंदगी यहां पे है ना उसी का रिफ्लेक्शन है वहां। आप जैसे पानी में अपना अक्स देखते हैं ना, उसी का अक्स है। अब यहां पे जो गुजारे हैं उसका अक्स वहां पे नजर आएगा, तो फिर सोच समझ के गुजारे ना, सोच समझ के भाग दौड़ करें। किस चीज की भाग दौड़ हो रही है, मेहनतें हो रही हैं, सारा दिन लग रहा है, रातें लग रही हैं, सोचें उसकी हैं, ख्यालात उसके हैं, प्लानिंग उसकी है, सब कुछ किसी और चीज की, और वहां पे जाके जी बहुत एकदम ही सरप्राइज ही हो जाए हम, कि कुछ और ही बदला मिलना शुरू हो जाए, जन्नत अलफिरदौस मिल रही है। ऐसे अपने आप को ना धोखा दे। फला यसुद्दन्नका अन्हा, तो ना रोके तुझको ए मूसा, आपको रोके नहीं, अनहा उससे, अनहा की जमीर आप किस तरफ जा रही है, इससे ये भी हो सकता है कि अनहा, एक अनहा और एक मल्ला युमिनु बिहा, ये है। तो एक तो तफसीर में ये है कि हा से मुराद नमाज है, क्योंकि पहले नमाज का जिक्र आया है कि आपको नमाज से ना रोके वो मन, वो जो ला युमिनु बिहा, जो नहीं ईमान रखता उस पे किसके, ये जो पीछे कयामत की बात हुई है, ठीक। दूसरे ये भी तफसीर है कि हरगिज ना रोके इससे वो शख्स जो ईमान नहीं रखता, किससे ना रोके, ये कयामत पे ईमान लाने से ना रोक दे आपको, ठीक है। कोई जो कयामत पे ईमान नहीं रखता वो इससे ना रोके, यानी कयामत पर आखरत पर ईमान लाने से ना रोके, समझ आ गए दोनों जमीरों को। मन ला युमिनु बिहा जो है वो तो समझ आ ही गई है ना, कि वो तो कयामत पर ईमान जो नहीं लिख रहा था। अब ये जो पहला है यसुद्दन्ना का अनहा, इसकी दो मैंने आपको बातें बताई, कयामत पर ईमान और नमाज, क्योंकि जो ईमान खुद नहीं रखता वो लोगों को भी बहकाता है, वो कोई नहीं कयामत आनी, वो देखा जाएगा, वो ऐसे ही लोगों ने मौलवियों ने अपनी बातें बनाई हुई, वो ये कहता है वो तबाह हवा हो, तो वो तो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करती, जाहिर है ख्वाहिशात पे चलना है तो किसको अच्छा लगेगा कि एक दिन खड़े होना हो और वहां पे, जाहिर है जब भी आपको कयामत का एहसास या दिल में यकीन पैदा होने लगता है ना, तो एक लगी बंधी, एक कैद वाली जिंदगी महसूस होती है कि यहाँ पे फिर रिस्ट्रिक्टेड लाइफ मुझे गुजारनी होगी, क्योंकि अगर यकीन आ जाए ना इंसान को कि मुझे 100% यकीन है कि मैं वहां पे खड़ी हूँ, जरा भी मेरे यकीन में शक नहीं है, जरा भी मेरा यकीन कम नहीं है, तो फिर पता है क्या होगा, लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। फिर इंसान को लगता है कि नहीं, मैं ये भी नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकती, नहीं इससे भी अल्लाह ने मना किया, उससे भी किया, उसकी रिस्ट्रिक्टेड लाइफ गुजरती है। और रिस्ट्रिक्टेड लाइफ थोड़ी कोई गुजारना चाहता है जो ख्वाहिशात का बंदा है। ख्वाहिश का बंदा तो कहता है बस खाओ पियो मजा करो, भाई ये क्या, मैं क्यों इस चीज को कभी इस चीज की रिस्ट्रिक्शन, इस वक्त सो, इस वक्त उठो और नमाज पढ़ो, और ये खाना है और ये नहीं खाना, और ये पहनना है और ये नहीं पहनना, और यहाँ ये कमाई करनी है, ये हलाल है और ये हराम है, और ये सारी चीजें मुझसे नहीं होती। वो कहता है मैं ख्वाहिश का, जो ख्वाहिश का बंदा ना उसको बस जो दिल चाहता है, दिल, जैसे हम कहते हैं ना मेरा नहीं दिल कर रहा आज क्लास में आने का, मेरा दिल नहीं दिल कर रहा आज सो के उठने का, दिल तो हमेशा ये कहेगा खाओ पियो और मजा करो बस, ये एक स्लोगन भी बनाए हुए ना, नारे है ना, खाओ पियो और मजा करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये ख्वाहिश का बंदा है। और ख्वाहिश वाली जिंदगी तो जानवर गुजारते हैं, ठीक है, कि मादर पिदर आजाद, जब चाह सो गए, जब तक उठ गए सारा दिन खाते पीते रहे बस, कुछ और ना जिंदगी में कोई मकसद ना कुछ, अल्लाह हू अकबर। तो ये ख्वाहिशात की पैरवी इंसान को रोक देती है नमाज से भी, अगर हम इससे अनहा से नमाज लेना, जो नहीं ईमान रखता कयामत पर और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता है ना, वो बंदा फिर नमाज से भी रोकता, वो कहता छोड़ो नमाज को, अगर इसके पीछे चले कहीं आपको रोक ना दे, फतरदा, वरना आप हलाक हो जाएंगे, वरना ये हलाकत होगी, या आपको कयामत पे ईमान से रोक दे, क्योंकि जब वो देखते हैं ना कि ये तो हमारे साथ फन कर ही नहीं रहे, तो वो कहते क्या तुम ये वो कयामत की फिक्र और पता नहीं हिसाब हो जाना है, बिल्कुल ही पागल हो गई हो, एक्सट्रीमिस्ट ही बन गई हो, छोड़ो ये सारी बातें, क्या डिप्रेसिव बातें करती हो। तो उनको ये अच्छा नहीं लगता कि कयामत की कोई फिक्र कर रहा है और एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ गुजार रहा है। वमा तिलका भी यमीनी का या मूसा, और ए मूसा आपके दाहिने हाथ में क्या है, यमीन दाहिने हाथ को भी कहते हैं और वैसे ही हाथ के लिए भी है। अब देखें ये सारी ईमान बिल्ला और ईमान बिल आखरत पहले सिखाया गया और फिर उसके बाद आगे कोई बात की गई। पीछे वाली बात से हमें क्या पता चला, एक बात और रह गई कि इसका मतलब हमें अपनी जिंदगी में उन लोगों को फॉलो नहीं करना। कोई हमें रोकता है ना आखरत की जिंदगी पर ईमान लाने से, उसके बारे में सोचने से, उसके मुताबिक अपनी इस जिंदगी को ढालने से, उस ईमान के मुताबिक। मैं जब आखरत पे ईमान होता है और मैं कुछ अपनी जिंदगी में चेंजेस लाती हूँ ना, फिर जाहिर है चेंजेस उस तरह से लाऊंगी जिससे मेरी आखरत संवर जाए। तो कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो जाती है, वो खुद ख्वाहिशात के बंदे होते हैं ना, तो उनको बहुत तकलीफ होती है। कहते इतराज भी करते हैं, ताने भी देते हैं, और बाज दफा रोकने की भी कोशिश करते हैं, तो उनकी बात में नहीं आना ना, रोकने पाए तुमको। और इसके अंदर यसुदन्ना का है, जब देखे ना इसमें भी लेटर्स ज्यादा चेंज हो, ज्यादा इजाफा हो गया, तो जब कोई रुकावट डालने की कोशिश करे, मजबूर करे, तो फिर ऐसी रुकावट खड़ी कर दे, आपको अपने मकसद से हटाने की कोशिश करे, आखरत पर ईमान से रोकने की कोशिश करे, उसके मुताबिक जिंदगी को ढालने से रोकने की कोशिश करे, अगर उसकी बात मान ली तो तरदा जो होता है ना, बुलंदी से नीचे गिरना होता है, वो धड़ाम करके गिरोगे, और कहाँ गिरना, मतलब जहन्नुम के गढ़ों में। तो इसका मतलब इस रास्ते पर कहा जा रहा है डट के चलो, ये मूसा अलैहि सलाम को कहा जा रहा है, इस रास्ते से हटना नहीं है। उस सोसाइटी की वजह से जो गॉडलेस सोसाइटी आज बनती जा रही है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, कोई खुदा है कि नहीं, कोई पाबंदियां उसकी तरफ से हैं कि नहीं, कोई उसने हुक्म दिया है कि नहीं, नोबडी केयर्स, नोबडी केयर्स। आप देखिए बाहर निकल के किसको परवाह है, कोई परवाह नहीं कर रहा। लेकिन तुमने उस रंग में नहीं ढल जाना, क्या तुमने ये नहीं सोचना कि सारे ही कर रहे हैं तो क्या हुआ मैंने अगर कर लिया, वो सारे तो ख्वाहिशात के बंदे हैं, ठीक है। अब आप सोच लें ये किस जमाने के अंदर ये आयात उतर रही हैं, उस मुसलमानों के लिए कितना मुश्किल है और उनके आगे कितनी रुकावटें हैं। उनको तो कहा जा रहा है कि नहीं, इन ख्वाहिशात के बंदों के पीछे नहीं चलना, जिसने अपनी ख्वाहिश को ही अपना खुदा बना लिया। आज मुश्किलात तो वैसी नहीं है, लेकिन ख्वाहिशात के बंदे बेशुमार मिलेंगे, सारी इंसानियत ख्वाहिशात की तो बंदी बन चुकी है। बस अपनी ख्वाहिश, अपनी ख्वाहिश, अपना आप देखना, मैं। देखिए ख्वाहिश नफ्स तो कहती है कि किसी की हेल्प भी ना करो, मुझे क्या मुसीबत पड़ी, मैं आराम करूं, मुझे क्या पड़ी भी किसी के दर्द में मैं उसके साथ खड़ी हो जाऊं, मुझे क्या जरूरत है इस तरह का डिप्रेशन लेने की, मुझे क्या जरूरत है किसी के काम आने की, हेल्प करने की, किसी को खुद ही करते फिर रहेंगे, मुझे क्या जरूरत है ये करने की, बस मैं आराम करूं और मेरे सारे मजे हों और मेरा सब कुछ अच्छा चलता रहे, ये है ख्वाहिशात का बंदा। तो आप देख लें आज दुनिया में कसीर तादाद इनकी है, और अल्लाह ताला इस तरह के बंदे बनने से हमें महफूज रखे कि हम ख्वाहिशात के बंदे बन जाएं, बस जो ख्वाहिश कहती है उसके पीछे चल पड़े। तो फरमाया तेरे हाथ में क्या है, ये अल्लाह ताला ने क्यों सवाल किया, अल्लाह ताला को पता है कि उनके हाथ में क्या है, अल्लाह को तो इल्म है, लेकिन जस्ट कि मूसा अलैहि सलाम श्योर हो जाएं कि उनके हाथ में क्या है, ये ना हो क्योंकि अभी इसी चीज ने सांप बनना है, ये ना हो बाद में सोचेंगे कोई आप पता मैं अंधेरे में लाठी की वजह सांप ही उठा के ले आया, मुझे क्या पता मेरे हाथ में क्या था उस वक्त, जस्ट टू मेक श्योर कि वो यानी वो श्योर हो जाए मूसा अलैहि सलाम, ठीक है। और ये भी बात है कि जब किसी को तालीम देनी होती है ना, तो सवाल पूछ के उसको मुतवज्जे किया जाता है, जैसे आपको मैंने, जैसे अभी यहाँ पे है, हल अता का हदीसु मूसा, क्या आपको मूसा अलैहि सलाम की खबर हुई, क्या आपके हाथ में है मूसा, तो वो भी एक तवज्जो दिलाने की, तवज्जो के लिए, जैसे आप देखते हैं इंटरक्टिव, अब खास तौर पे बच्चों के साथ, आप लोग तो माशाल्लाह बड़े हैं, आप वैसे ही इतनी कॉन्सेंट्रेशन से माशाल्लाह क्लास सुनते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना उनके साथ इंटरएक्टिव रहना पड़ता है, अगर थोड़ी देर उन आप लेक्चर की तरह देना शुरू कर दें वो कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, बार बार उनसे पूछना चाहिए, अच्छा ये बताएं अल्लाह कौन है, अच्छा ये बताएं ये सब कुछ किसने पैदा किया, ऐसे करना पड़ता है ना ताकि वो उनकी तवज्जो रहे, फिर वो आपको फिर जवाब देते। तो अल्लाह ताला ने एक तो ये कि ये तालीम का एक अंदाज होता है, मैं अभी आपसे कई दफा सवाल करती रहती हूँ ताकि आप थोड़ा सा जाग जाए, और फिर दूसरा कंफर्टेबल भी करने के लिए ना, अभी नई नई बात हुई है मूसा अलैहि सलाम को काम डाउन कर, और देखिए जब अल्लाह ताला की माँ से मूसा अलैहि सलाम का नाम लिया गया होगा तो उसमें कितनी लज्जत होगी, है ना, कि है मूसा, कोई कोई एक मेरी कोई प्यारी सी स्टूडेंट है, जब वो जब मैं उनके लिए कोई मैसेज छोड़ती हूँ तो उनका नाम लेती हूँ, तो वो कहती है हाय आपके जुबान से इतना प्यारा लगता है जो आप मेरा नाम लेती। और मैं हालांकि मेरी क्या हैसियत है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जो अल्लाह ताला किसी का नाम लेता होगा तो उसकी लज्जत क्या होती होगी, क्या मजा आता होगा। सुबहान अल्लाह, इसीलिए तो फिर मूसा अलैहि सलाम मतलब जैसे कह सकते हैं आप कैरिड अवे हो गए ना जवाब देने में। जवाब इतना सा था, काला उसने कहा ही आसाया, ये मेरी लाठी, बस इतनी बात पूछी गई थी ना। लेकिन मूसा अलैहि सलाम जब किसी से मोहब्बत भी होती है ना, दिल करता है ये फोन बंद ही ना हो कभी, और दिल करता है कि ये बोलता ही जाए और इससे बातें होती ही जाए। फिर बंदा ऐसे ही बात को लंबा ही करता जाता है कि जाहिर है अब जब आप चाहते हैं कि एक कनेक्शन टूटे ना तो आप बात को लंबी खींचते ही जाएंगे ना। इसीलिए वो जो अल्लाह से बातें करते हैं, वाकई अल्लाह ताला हमें नमाजों में हमारी वो लज्जत दे दे या अल्लाह, फिर उनकी नमाजें भी जाहिर है लंबी ही होती हैं। तो वो अल्लाह ताला से जब बात करें, ये मेरा लाठी है और अल्लाह ताला ने पूछा नहीं आप इसे क्या करते हैं, लेकिन आप खुद ही बताने शुरू कर, अतवक्का के मैं सहारा लेता हूँ अलैहा इस पर, अहुशु बिहा और मैं झाड़ता हूँ इससे, आला गनमी अपनी बकरियों के लिए पत्ते वगैरह झाड़ता हूँ यानी दरख्तों से कि बकरियां खा लें, और मैं उसके ऊपर टेक भी लगाता हूँ तो यानी लंबा कर रहे हैं। वलिया फीहा मआरिब उखरा, और इसमें मेरे लिए और भी फायदे हैं। अब ऐसा लगता है कि मूसा अलैहि सलाम को ये थोड़ा सा एहसास हुआ ना कि मैं लगता है बहुत ही लंबी बात कर रहा हूँ, कहीं अदब के खिलाफ ना हो जाए, कहीं अल्लाह ताला नाराज ना हो जाए, तो पहले तो बात शुरू की, तो वो जाहिर है ऐसे शुरू की कि बस बात को लंबी खींच लूँ ताकि ड्रैग कर रहे हैं ना, ताकि बस बात इतनी लंबी हो जाए और बातें होती ही रहें। कहीं किसी को ये मौका मिल जाए तो उस किससे बात हो रही है, कोई इंसान थोड़ी है, अल्लाह ताला रब्बे कायनात से। अल्लाह अकबर। तो फिर जब ये एहसास हुआ ना कि ये कहीं ज्यादा ही वो ना हो जाए और कहीं ये अल्लाह ताला को नाराज ना कर दे, तो फिर बस कह दिया अच्छा अच्छा बस मैं मेरे जो फायदे की चीजें हैं बस वो सारी मैं इससे लेता हूँ। तो कुछ बातें बता दी और फिर कुछ एहसास हुआ तो अब फौरन से अदब यही था ना, तो बस इतनी बात कर ली मैं इससे फायदे लेता हूँ। जब ये नहीं देखेंगे आपके मूसा अलैहि सलाम कह रहे हो अल्लाह तू तो अल्लाह है, तू तो रब है, तुझे तो खुद ही पता ही है कि ये क्या है, मैंने क्या बताना, ये नहीं। हाँ, और इससे हमें मूसा अलैहि सलाम का जो शौक है अल्लाह ताला से बात करने का और जो उनको मजा है उसके अंदर, उसकी कैफियत पता चल रही है। कैफियत बयान तो नहीं हुई लेकिन उनकी बात से पता चल रही है। और जब किसी ऐसे से बात कर रहे हो तो वो फिर इंसान कंफ्यूज ही हो जाता है ना कि क्या बात करूं और कितनी लंबी करूं और छोटी करूं या यहाँ पे बंद कर दूं या क्या करूं। अदब भी है, मोहब्बत भी है, बात भी लंबी करनी है, लेकिन ये भी डर है कि कोई नाराज ना हो जाए। तो सारी मिले जुले एक्सप्रेशंस आपको इसमें पता चल रहे हैं। काला अल्पिया या मूसा, अल्लाह ताला ने फरमाया इसको फेंक दो मूसा, हैं इसको फेंक दो, अभी तो इतने फायदे बताए हैं मैंने, मैंने तो कहा है कि इससे मैं ये भी करता हूँ और इससे बहुत सारी मेरी हालतें पूरी थी, बड़ी फायदे की चीज है, और अल्लाह ताला फरमा रहा है फेंक दो इसको, तो आगे क्या होना चाहिए। आगे सन अपने आप को रख के सोचें, आगे हम कहें फौरन हम ये कहें क्यों क्यों, ये तो इतनी अच्छी चीज है, इतनी फायदे की चीज है, मेरे से कोई गुस्साखी हो गई कि मुझे ये पहनने को कह दिया। सोचें क्या कहते हैं आप। इसलिए मैं पूछ रही हूं क्योंकि अल्लाह ताला के अक्सर हुक्मों के आगे तो हम यही कहते हैं क्यों, मुझे क्यों ये कह दिया। और बाज लोग कहते हैं हाय अब ये भी करना पड़ेगा, यानी उनके ऊपर अल्लाह ताला का कोई हुक्म कितना ही भारी हो जाता है, हाय हाय जैसे हम तो पहले से कर कर के थक गए हैं अब ये भी करना पड़ेगा। तो हमारे अल्लाह के हुक्म के आगे रिएक्शंस क्या होती हैं, कम ही होता है कि समय ना हुआ था ना सुन लिया बस मान लिया। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अल्का तो उसने डाल दिया उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं है कि अल्लाह जबकि देखें एक नेचुरल जैसे कन्वर्सेशन चल रही है उसमें तो एकदम से ये होता है ना कि हाय हाय इतनी फायदे की चीज में कैसे फेंक दूं, ये तो मेरी काम की चीज है और मैंने भी बताया भी है कि मेरी काम की चीज। तो हम सोचते हैं ना कि इसमें तो मेरा इतना फायदा है और ये तो चीज है कि मैं इसके बगैर रह नहीं सकती और इसके बगैर तो मैं चल नहीं सकता बिजनेस, और ये तो मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट है और ये मैं कैसे करूं, ये तो मेरे से पूरा हो ही नहीं सकता, और आपको क्या पता कि ये चीज मुझे कितनी पसंद है और ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। इतनी बातें करते हैं हम, और ये तो अगर मैंने ऐसा कर लिया तो सारे लोग ही मेरे पीछे पड़ जाएंगे, और ये तो मैंने अल्लाह का हुक्म मान लिया तो मेरी फ्रेंड्स ही मुझे छोड़ जाएंगी, और मैंने ये अल्लाह का हुक्म मान लिया तो मेरे तो पीछे एजेंसीज पड़ जाएंगी। कितनी बातें हमारे सामने अल्लाह के हुक्मों के आगे कितनी बातें, नहीं कि हमने दुनिया में नहीं चलना, नहीं, तो दीन लेके चलना तो दुनिया भी तो लेके चलनी है ना, ऐसे थोड़ी है। तो वो तो उनकी दुनिया थी ना, वो तो ये इनकी दुनिया ही थी, लाठी उससे वो भी करते थे, मतलब अच्छे अच्छे काम ही ले रहे थे, कोई जरूरत की चीज थी, कोई गलत चीज तो नहीं थी। तो वो पूछते ना कि अल्लाह इसमें गलती क्या है, इससे क्या फायदा होगा, मेरे फेंकने से क्या फायदा भला मिल जाएगा, ये काम की चीज है, कोई गुनाह की चीज तो नहीं। कितने आर्ग्यूमेंट्स है हमारे सामने, क्या हैसियत है हमारी, और हमारी बातें देखें क्या है, और वो अल्लाह के इतने बड़े पैगंबर हो के फौरन अगला सवाल ही कोई नहीं। हमारी सवालों की लिस्ट पता है क्यों होती है, बनी इसराइल की तरह, इसलिए करना कुरना नहीं होता, बस पूछना होता है, पूछ पूछ के इतना पूछोगे आखिर करना ही नहीं। इसे अपना ईमान का हम जायजा ले सकते हैं कि क्या ईमान है हमारा। फइदा हिया हय्यतुन, तो वो बन गया सांप, तस आ तेजी से फुर्तीला सांप, इतनी तेज इतनी स्पीड के अंदर वो ऐसे हरकत करने लगा। अब देखें जब जू ही वो उसको डाला तो वो हय्या, यहाँ पे हय्या है, दूसरी जगह सोबान है, एक जगह जान है, सोबान बड़े सांप को कहते हैं, एक और जगह जान कहा, फुर्तीला भी और बहुत तेजी हरकत करने वाला भी पतला सांप, तो ये सारी इसका मतलब खसूसियात उसमें थी, क्योंकि जो बड़े सांप होते हैं ना जब आप उनको देखते हैं तो वो बस इस तरह मरियल से पड़े रहते हैं, वो बिल्कुल ही हरकत ही नहीं करते, जैसे आपने कभी देखा होगा वो तो बिल्कुल कॉयल सी बना के और वहीं पे पड़े रहते हैं, लेकिन जो पतले पतले से होते हैं वो बहुत तेज हरकत करते हैं। तो ये कैसा, और हैया तो किसी भी सांप को कहते हैं, तो इसकी डिस्क्रिप्शन दूसरी जगहों पे है, बड़ा भी था और इतना तेज, और देखिए आप नेचुरल इंसान का रिएक्शन क्या होता है, सांप को देखते ही जान निकल जाती है, और वो अगर तेजी से इस तरह से फुर्तीला भाग रहा हो तो फिर तो क्या हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन पता चलता है दूसरी जगहों पे कि मूसा अलैहिस्सलाम तो पलट के भागे, एक नेचुरल बात है, फितरत में इंसान की है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, आप डरे नहीं, आप डरे नहीं, अल्लाह ताला के हाँ अंबिया नहीं डरा करते, यानी अल्लाह आपके साथ है, आप नहीं डरे। काला खुद हा वला तखफ, इसको पकड़ लो और ना डरो। अब आप हैरान नहीं हो रहे कि देखें जिस वक्त वो बेजरर सी चीज थी उस वक्त कह दिया गया फेंक दो, जब वो शर वाली चीज बन गई, सांप बन गया, तो कह रहे पकड़ लो, हम तो फौरन आगे बोलना शुरू कर दे। लेकिन जिसको अल्लाह ताला पे यकीन होगा ना कि अल्लाह ने जो मुझे हुक्म दे दिया इसमें मेरे लिए कोई नुकसान नहीं, कोई शर नहीं, इसमें मेरे लिए फायदा ही होगा, मेरे लिए नुकसान हो ही नहीं सकता, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है इसमें कैसे मेरा नुकसान हो सकता है। चाहे बजाहिर बजाहिर देखने में क्या नजर आ रहा है, फूल तो नहीं नजर आ रहे, सांप है, हर कोई जानता है, बच्चा भी जानता है कि सांप क्या चीज होती है। जरर नजर में क्या है, जरर नजर में क्या, नुकसान नजर में, खौफनाक चीज है, लेकिन जिसको अपनी नजर से भी ज्यादा अल्लाह पे भरोसा हो ना कि मेरी नजर गलत कह सकती है, मेरा अल्लाह गलत नहीं कह सकता, उसको कोई मुश्किल नहीं होगी। आसान तक रहो सही हो सकता है तुम्हें कोई चीज बुरी लगे लेकिन उसी में तुम्हारे लिए खैर हो, वो ऐसे यकीन रखता है। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग देखते, आग तो जलाती है और क्या करती है, थपकी तो नहीं देती, ठंडी तो नहीं होती, गर्म ही होती, बच्चे से भी पूछा लेकिन उसमें कूद गया, क्योंकि मेरी नजर कह रही है कि ये नुकसान देगी, लेकिन मेरा अल्लाह जब बचाने पे आए तो फिर कैसी कोई चीज नुकसान दे सकती। यही बात यहां है। मेरी नजर कह रही है ये सांप है, मेरी नजर कह रही है कि हाय ये मैं अल्लाह का हुक्म मानूंगी तो ये मुझे नुकसान हो जाएगा, ये मेरे लोग पीछे पड़ जाएंगे, मेरे लिए ऐसा हो जाएगा, मेरे लिए जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, मेरी नजर ये सब कुछ बता रही है, मेरा दिमाग भी बता रहा है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरा रब जो है वो कभी मेरा बुरा नहीं चाह सकता। ये बस सारी बात ना यकीन की है, कोई शर शर हो ही नहीं सकता जब मेरे रब ने हुक्म दे दिया। अरे ये यकीन अल्लाह तू हमें अता फरमा दे, या अल्लाह ऐसा यकीन हो हमारे पास कि हम आंखों को देख के अपनी आंखों को जुटला दे कि मेरी आंख नहीं सच कहती, मेरा रब सच कहता है। और मेरा रब ये शर क्या है, मेरा रब ये ताकत रखता है कि इस शर को ही खैर में बदल दे, और खैर को चाहे तो शर में बदल दे। तो चीज इटसेल्फ ना खैर है ना शर, देखिए आसात ही वो तो खैर की चीज थी, वो तो कह रहे थे फायदे हैं मारे में इसमें, लेकिन क्या बना वो शर बन गया, और वो चाहे तो ये शर को उठा के खैर बना दे, सांप को पकड़ा तो वो लाठी बन गया, पता नहीं चल रहा कि कैसे अल्लाह ताला चाहे तो हालात जो भी हैं, किसकी किस्म के भी हालात हैं, वो कितने ही बुरे हालात हैं, अल्लाह चाहे तो उसके अंदर खैर निकाल दे, उसका नतीजा जो है वो खैर वाला निकाल दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने कैसे हालात हो गए थे, घर बार छोड़ना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी, घर अब हर चीज अपना कबीला अपनी सब कुछ छोड़ के निकल गए, बजाहिर देखने में क्या लग रहा है शर लग रहा है, लेकिन उसी में अल्लाह ने कितनी खैर निकाल दी। हुदैबिया में क्या लगता था कि ये तो जिल्लत के साथ शर्तें मान रहे हैं, हम ये हम नीचे हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया ये फतह मुबीन है। तो याद रखें हर चीज का नतीजा जो है ना रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है, चाहे वो मुझे वक्ती तौर पे बजाहिर देखने में कितनी भी शर लग रही है, बुरी लग रही है, मगर नतीजा अल्लाह के हाथ में है, वो चाहे तो उसमें से खैर निकाल दे। अल्लाह अकबर, ईमान की बात है, ये सारी ईमान ही तो सिखा रही है सूरत, मक्की सूरतों में ईमान ही तो मजबूत होता है, ईमान मजबूत होगा तो फिर आगे मदनी सूरतों में काम आएंगे, तो फिर फट फट इंसान करेगा उनको, और इसी ईमान को मजबूत बनाना है हमने। काला खुजहा वला तखाफ, इसको पकड़ लो और डरो नहीं, सनुईदुहा सीरत हल उला, हम अनकरीब इसको लौटा देंगे कि इस पहली हालत में, वही मूसा अलैहि सलाम जो इतना डर रहे थे उन्होंने ही सांप को पकड़ लिया। पैगंबर है ना अल्लाह के, कैसे अल्लाह का मानते हैं। वद्मुम यदक इला जनाहिका, और मिला लो अपना हाथ अपने पहलू से, तखरुज बैदौ मिन गैर सू इन आयतन उखरा, तो निकलेगा बैदौ सफेद मिन गैर सू इन बगैर किसी तकलीफ के, बगैर किसी खराबी के, यानी कोई बीमारी की वजह से नहीं ऐसा होगा, ग्लोइंग होगा, ग्लो कर रहा होगा, ग्लोइंग वाइट, ऐसा नहीं कि वो जो बर्स की बीमारी हो जाए या कोई और ऐसी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से वाइट सन, वो वाला नहीं, ये आया तो नुकरा, ये दूसरी निशानी। तो पहली निशानी क्या थी, वो आसागी, और दूसरी नहीं, लीनूरी का मिना आयाती नल कुबरा, ताकि हम दिखाएं अपनी बड़ी बड़ी निशानियों में से। ये तो अभी दो निशानियां है मूसा, ये तो अभी स्टार्ट है, इससे आगे हम आपको बड़ी बड़ी निशानियां दिखाएंगे, और क्या क्या निशानियां फिर अल्लाह ताला ने दिखाई, समुंदरों को फाड़ के दिखा दिया जो आज तक नहीं कभी हुआ था, आसा मारते थे तो चश्मे बह पड़े आसा से, क्या क्या निशानियां दिखाई अल्लाह ताला ने। इधब इला फिरौना इन्नहु तगा, अल्लाह ताला ने फिर हुक्म दिया, मिशन का बताया, अब आपका मिशन ये सारी ईमान बिल्ला ईमान बिल आखिरा, और ये मोजजात आपको दिए, निशानियां दी, और आगे भी बताया और भी आपको हम निशानियां दिखाएंगे, और फिर फरमा दिया कि अब आप निकले, फिरौन की तरफ निकले, वो बड़ा सरकश हो चुका है, और उसकी सरकशी क्या थी कि हदें ही उसने क्रॉस कर दी थी, जुल्म की इंतहा कर दी थी, तो अब ये मैसेज लेकर उसकी तरफ जाए। अब काम बहुत बड़ा था, ठीक है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, और मूसा अलैहि सलाम को देखे हम कहाँ आग लेने आए, नबूवत मिल गई, अब वो जैसे हमारे जैसे लोग होते हैं ना, उनको जरा सा भी बड़ा एजाज मिल जाए ना, बस फिर तो फूले नहीं समाते, अब मैं कहाँ अपनी लगा दूँ, फेसबुक पे भी बता दूँ कि मुझे ये डेजिग्नेशन मिल गया, ये ऑनर मिल गया, लोगों को भी बताते हैं मुझे तो ये ओहदा मिल गया, मैं तो अब ये बन गई हूँ, अब मैं इंचार्ज बन गई हूँ, मैं लीडर बन गई हूँ, मैं फलां बन गई हूँ, बस इतनी खुशी कि उसके ये याद ही नहीं रहता कि उसके बाद मेरा काम क्या था, या ये एक जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी का एहसास रखना कि ये ओहदे, हर ओहदा अपने साथ एक जिम्मेदारी लेकर आता है कि और मुझे से जिम्मेदारी की पूछ होगी। और इंसान यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद नहीं जिम्मेदारी ली, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर डाली। तो अल्लाह से ही दुआ करते हैं कि तू ही मुझे फिर अब इसके अंदर तू ही चलाएगा। तो जिम्मेदारी आपके ऊपर पड़ जाए, आपने खुद लेके नहीं, ओहदा मांग के नहीं लिया, लेकिन आपको दे दिया गया, तो अब ये नहीं कि खुशी से बस छलांगे मार रहे हैं, अब किस किस को बताऊं, समझ ही नहीं आ रही खुशी में। ये मूसा अलैहिस्सलाम का हाल नहीं हुआ, उनको जिम्मेदारी का एहसास हुआ। तो अब दुआ मांग रहे हैं, कौला रब्बी शराह ली सदरी, फरमाया है मेरे रब मेरे सीने को खोल दे। सीने को खोलने का मतलब क्या होता है, मेरी एंग्जाइटी को दूर कर दे, मेरे अंदर से ये जो एक होता है ना, दिल को पुरसकून कर देना कि बेचैनी ना अंदर रहे। अल्लाह मेरे सीने को खोल दे। देखिए आप जब शरा सदर हो जाती है ना, फिर कोई चीज बोझ नहीं लगती। अभी अब आपको शरा सदर अगर हो गया ना कि मैंने कुरान पढ़ना है, इसके लिए कुरान के लिए अगर हो जाए, तो आप इसको ये नहीं कहेंगे हाय फिर क्लास, हाय फिर ये, फिर असाइनमेंट, हाय फिर ऐसे, क्योंकि आपका शरा सदर हो जाए ना, फिर इंसान अंदर से काम हो जाता है, पुरसकून हो जाता है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया अलम नशराह लक सदरक, क्या हमने आपको सीना खोल नहीं दिया। सीना खोलने का मतलब ये नहीं फिजिकली खोल दी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, आपसे सलाम के लिए अल्लाह ताला ने खोल दिया। तो फिर इंसान काम हो जाता है बिल्कुल, उसकी बेचैनी बेकली दूर हो जाती है। तो जब जिम्मेदारी का एहसास है, तो जिम्मेदारी के साथ एक बोझ होता है, अल्लाह मेरे सीने को खोल दे। वो या सिर ली अमरी, मेरे काम को आसान कर दे मेरे लिए, ये ना हो काम से इंसान तंग आ जाए। तो मेरे काम को, और फिर आगे फिरौन है, फिरौन के सामने काम करना आसान तो नहीं है, तो इसको आसान कर देना, बहुत बड़ा एक चैलेंज था। वाहलुल उकदतम मिन लिसानी, और अल्लाह मेरी जुबान की गिरा को खोल दे। जुबान की गिरा क्या थी कि कहा जाता है कि मूसा अलैहि सलाम, बाज रिवायात में है कि पैदाइशी तौर पे लुकनत थी उनकी जुबान में, और बाज में आता है कि नहीं जब छोटे थे तो एक दफा फिरौन की दाढ़ी को पकड़ लिया। अब वो उसने कहा है ये तू बच्चा मेरी दाढ़ी पकड़ा, इसका मतलब यही वो बच्चा है जो इस तरह इक्तदार छीनेगा और ऐसे मेरे साथ होगा, इसकी वजह से मेरे साथ प्रॉब्लम्स होंगे, इसकी वजह से वो बच्चों को जिबा करा रहा था। तो फिरौन की बीवी ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ बच्चा है जो इसको थोड़ी कुछ पता है। तो उसने कहा मैं तो टेस्ट करूंगा। उसने एक तरफ चमकती हुई चीज रख दी, दूसरी तरफ अंगारे रख दिए, हीरे मोती जवाहरात रख दी, और एक तरफ अंगारे रख दिए, और मूसा अलैहि सलाम को छोड़ दिए। छोटे से बेबी थे, तो उन्होंने जाके अपना हाथ बढ़ाना चाहा हीरे जवाहरात की तरफ कि जिब्राइल अलैहि सलाम आए और उनका हाथ पकड़ के कोयलों पे रख के दिया, और उन्होंने मुंह में रख लिया कोयला, जिसकी वजह से उनकी जुबान में लुकनत आ गई। बार कैफ पता नहीं है कि ये रवायात कितनी इनकी सनद स्ट्रॉन्ग है, ऐसे लगता तो नहीं कि एक बच्चा पकड़ के और हाथ से, और फिर वो हाथ से छोड़ ना देता, मुंह में भी रख लिया, वल्लाह आलम, लेकिन कहा यही जाता है। और इसकी दलील भी हमें हदीस से मिलती है, क्योंकि शायद आप में से कम लोगों को पता हो कि हजरत हुसैन बिन अली जो थे रज़ी अल्लाह तआला, उनकी जुबान में भी लुकनत थी, और इतनी ज्यादा लुकनत थी कि बाज दफा वो एक पूरा जुमला भी पूरा नहीं बोल सकते थे। तो एक दफा बोलने लगे तो वो इतना हकलाते जा रहे थे, हकलाते जा रहे थे, लेकिन आपसे सलाम मुस्कुरा रहे थे और खामोशी से सुन रहे थे। ये नहीं कि बस बस खत्म भी करो अपनी बात को, हाँ क्या कहना चाह रहे हो तुम बताओ भी। अब हम अपने बच्चों के साथ भी इस तरह चिढ़ जाते हैं, ये क्या कहना है, कभी कभी हमारे बच्चे को कुछ मतलब वर्ड्स नहीं मिल रहे होते, वो बार बार कोशिश कर रहा होता है, उससे बात नहीं बताई जा रही थी, तो या बार बार मजाक, ऐसी बातों पे मजाक करना शुरू कर देते हैं बाज लोग। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने शफीक मेहरबान थे, आप सल्लम खामोशी से सुनते रहे, जब तक उन्होंने बात अपनी मुकम्मल नहीं कर दी, और बहुत मुश्किल से उन्होंने मुकम्मल की, पता नहीं कितनी देर लगी होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए सुभान अल्लाह, नबी रसूलुल्लाह कितनी शफीक हस्ती थे। तो आपने फरमाया कुछ और नहीं, ये फरमाया इसको ये लुकनत अपने चचा मूसा की विरासत में मिली है। पैगंबरों चचा इसलिए कहा कि पैगंबरों का भी एक रिश्ता होता है आपस के अंदर, ये अपने चचा मूसा से विरासत मिली है। इससे कोई भी यानी मजाक नहीं कर सकेगा, कोई भी कुछ कह नहीं सकेगा, कोई भी इरिटेट नहीं होगा, और उस बच्चे को कितना कॉन्फिडेंस आएगा। वरना ऐसे बच्चे बाज दफा इतना एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, बोलना ही बंद कर देते हैं कि हम बोलेंगे तो लोग हंसेंगे। तो सुबहान अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत कैसी थी? तो उन्होंने दुआ की कि अल्लाह मेरी जुबान की ये गिरा को खोल दे। तो क्योंकि जुबान से भी सही से बात करना, जब आप दावत का काम करेंगे तो उसमें जरूरी है, इसीलिए इस दुआ को हर एक को मांगना चाहिए जो कि दावत का काम कर रहा हो या जो कहीं पढ़ाना चाहता हो उस्ताद के लिए, ये दुआ लाजिम है। इस दुआ की वजह से आप बाज दफा आप कुछ बात करना चाहते हैं लोगों को लेकिन वर्ड्स नहीं आ रहे होते, बाज दफा हकलाना शुरू कर देते हैं, बाज दफा सही तरह बात नहीं कर पाते, यफकाउ कौली है ना, वो मेरी बात को समझ भी जाए। बाज दफा आप इतना अच्छा समझाना चाह रहे हैं लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आ रही क्या। तो ये भी इतनी जामे इतनी प्यारी दुआ है और एक मुबल्लिग के लिए तो बहुत ज्यादा जबरदस्त दुआ है, इसको याद करना चाहिए कि जिन तक मेरी बात पहुंचानी है अल्लाह तू ही उनके समझा देना, क्योंकि इंसान की अपनी पावर थोड़ी है कि उनको समझ भी आ जाए सारी बातें। तो इससे पता चलता है कि ये भी इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को समझ आ जाए बातें, ऐसी वर्ड्स और ऐसे ऐसे मुश्किल मुश्किल चीजें नहीं बोलनी चाहिए जिससे लोगों के ऊपर से ही गुजर जाए। कोशिश यही होनी चाहिए कि वो बात करें जो लोगों की समझ में आसानी से आ जाए। और यहां पे तो खैर फिरौन से बात करनी है, वो उसको तो समझाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और फिर एक और दुआ, वजअली वजीर मिन अहली, अल्लाह मेरे साथ मेरा वजीर बना दे। वजीर कौन होता है कि जो आपका बोझ बांटे, ये मेरी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है अल्लाह उसमें मेरा असिस्टेंट उनको मुकर्रर कर दे। हारून आखी, हारून मेरे भाई को। अच्छा, सूरह मरियम में हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने बतौर रहमत हदिया दिया, हदिया इसको कहा वहां पे, तोहफा एक अल्लाह ताला ने दिया, हबली का वर्ड आया कि अल्लाह ताला ने गिफ्ट किया उनको ये नबुवत इनके भाई को इनकी वजह से, ये अल्लाह ताला की रहमत थी, हम पढ़ चुके हैं ये। तो उनके भाई को उन्होंने सिफारिश इन्होंने की अपने भाई की, तो क्या सिफारिश कर सकते हैं अगर आप जी, अगर कोई वाकई कॉम्पिटेंट है। और हारून अलैहिस्सलाम जो थे ना, एक और जगह पे आता है वो ज्यादा अफसाहुल कलाम थे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि वो मेरे से जुबान में ज्यादा एलिक्वेंट है, बहुत फसीह है जुबान में, वो पहले भी वहां पे काम करते थे बनी इसराइल में, उनको नेकी की बातें बताते थे। तो ये उन्होंने अपने साथ किसी को चाहा कि मेरी हेल्प के लिए अल्लाह ताला तो उनको रख दे। उन्होंने ये देखे, ये बहुत बड़ी बात है, इसमें मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको इतना नहीं बना लिया कि मैं ऑल इन ऑल हूँ, नहीं, मेरे साथ अल्लाह मुझे हेल्पर दे दे। और ये भी कम लोगों का हौसला होता है क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं बस मेरा ही नाम हो, मैं ही आगे आगे हूँ, मुझे नहीं किसी का चाहिए, किसी को मिलाते ही नहीं कि साथ काम के लिए साथ लगा ले, किसी को तैयार ही नहीं करते कि वो भी आगे आ जाए, वो भी इस काम में हिस्सेदार बन जाए, या उसको भी कुछ सिखा दें या उसके साथ भी हेल्प ले लें। उनको ये होता है कि फिर मेरी ही तो जात पीछे चली जाती है तो मैं क्यों पीछे हूँ, मेरा तो आगे आगे बस मैं ही हूँ। तो जब दीन का काम करना हो ना, क्योंकि उनके लिए मिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए वो उनको मिलाते हैं साथ। अगर जहां पे जात इंपॉर्टेंट होती है ना और मिशन पीछे होता है, वहां पे मिशन का तो बेड़ा गर्क बेशक होता रहे, हम जैसे उल्टा सीधा काम करते ना, मुझे नहीं किसी जरूरत, इसलिए कोई हर्ज नहीं होता रहा असिस्टेंट लेने में, किसी की मदद लेने में, इसको अपनी ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए। और फिर हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला किसी पे कोई जिम्मेदारी डालता है किसी मिशन को पूरा करने की और अल्लाह ताला उसके लिए भलाई चाहता है तो उसके लिए एक वजीर मुकरर कर देता है जो नेक होता है, और अगर वो भूलता है तो ये उसको याद करा देता है, और अगर वो याद रखता है तो उसकी मदद करता है इसके अंदर, सुभान अल्लाह। तो एक और हदीस में आता है बुखारी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला जिसको भी खलीफा बनाता है उसके दो राजदार होते हैं, एक राजदार उसकी नेकी का हुक्म देता है और उस पर उबारता है, और दूसरा राजदार उसकी बुराई का हुक्म देता है और उस पर उबारता है, और मासूम वो है जिसको अल्लाह मासूम रखे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसमान वालों में से मेरे दो वजीर हैं और जमीन वालों में से भी मेरे दो वजीर हैं। आसमान वालों में जो दो वजीर हैं जिब्राइल और मिकाइल, और जमीन वालों में जो दो वजीर हैं वो अबूबकर और उमर। तो याद रखेंगे जिसको अल्लाह ताला कोई मनसब देता है ना और फिर अल्लाह उसके खैर का भी इरादा करता है तो फिर क्या दे देता है उसको, अच्छा वजीर देता है। क्योंकि देखें ये जो साथ लगे हुए थे ना लोग, ये इंसान को उल्टे रास्ते भी लगा देते हैं, ये बड़े बड़े लोगों के तख्ते क्यों उलटते, इनके साथ कोई खुशामदी और ऐसे लोग जी, आप फिक्र ना करें, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी बहुत पॉपुलैरिटी, आप तो ये आप तो वो, और उसका दिमाग इतना चढ़ा देते हैं, वो उल्टा ही हो जाता है फिर। इसीलिए अच्छे लोग, नेक लोग साथ होना कितना जरूरी है, कि अगर वो भूल जाए तो क्या फरमाया, वो उसको याद दिला देता है, अगर उसको याद हो तो उसके अंदर उसकी मदद करता है। ठीक है, तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे साथ हमारे हेल्पर हों, वो भी नेक किस्म के लोग हों, और इसमें हर्ज नहीं कि आप हेल्प लें। वशदुद बिही अजरी, कि इसके जरिए मेरी बैक मजबूत कर, मुझे सपोर्ट मिलेगी। और ये ना वो जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं कि अल्लाह मैं क्यों चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी फेवर है ना, पहली वाली बात के अंदर इतनी जस्टिफिकेशंस नहीं दी, लेकिन ये नबुवत मांगना अपने भाई के लिए कोई छोटी बात। और इससे हमें पता चलता है कि अपनी फैमिली को भी अपने साथ मिलाना चाहिए नेकी के काम में, उनको भी साथ साथ रखना चाहिए दीन के कामों में। इसमें ये बड़ी बेहतरीन नेकी है। और ये वो हदीस में जैसे आता है, उलमा कहते हैं, हदीस नहीं है, उलमा कहते हैं कि सबसे बड़ी बेहतरीन चीज जो किसी भाई ने किसी के लिए की हो वो यही है जो मूसा अलैहिस्सलाम ने की, वो अशरिकु फी अमरी, और शरीक कर दे उसको मेरे काम में, यानी नबुवत दे दे। कई नुसब्बे के हम तस्बीह करें का तेरी कसीरा, बहुत ज्यादा हम दोनों मिल के तेरी तस्बीह करें, तेरे गुण गाएं, व नज़कुरा का कसीरा, और हम जिक्र करें तेरा कसीर, हम दोनों मिलके तेरा जिक्र करें। इसलिए कि जब इंसान किसी मिशन पे होता है, कोई काम, खिदमत खल्क का ही मसला आप देखें, तो इंसान सोचता है अब जिक्र इलाही के लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं, अब तस्बीह करने के लिए मेरे पास कहाँ वक्त, अब कुरान पढ़ने के लिए कहाँ वक्त, नहीं, अल्लाह को याद करना, आगे भी बात आएगी कि अल्लाह को याद करते रहना इसके अंदर, ये ना भूलना। तो दावत का काम, इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, लेकिन फरमा रहे हैं कि हम दोनों तेरी तस्बीह करेंगे और बहुत ज्यादा, और तेरा जिक्र, इन्नका कुंता बिना बसीरा, और तू इसके ऊपर हमें देखने वाला है, तू तो देख ही रहा है अल्लाह। इसमें ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला की नजर हर चीज के ऊपर है, और हम तेरी निगाहों में, और हम तेरे से ये वादा पूरा करेंगे, ये तू देखेगा। और फिर इसमें एक दुआ भी है कि अल्लाह तो यानी हमें अपनी नजरों में रखना, हमारी मदद करना, यानी ये मतलब है कि हमारी मदद करना। قال قد أوتيت سؤلك يا موسى, तहकीक, फरमाया अल्लाह ताला ने, मैंने दे दिया जो तूने सवाल किया है मूसा, है ना, यानी रिक्वेस्ट ग्रांटेड, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है मूसा। वलकद मनन्ना अलैक मर्रतन उखरा, एक पहले भी हम तुम्हारे ऊपर एहसान कर चुके हैं। अल्लाह ताला ने याद कराया कि क्यों ना अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करेगा, क्यों ना तुम्हारी मदद करेगा, क्यों तुम्हें कभी अकेला छोड़ेगा, तुम्हें तो उसने पहले भी तुम्हारे ऊपर बहुत सारे इनामात किए हैं ऐ मूसा, ये तुम्हारी दुआ कबूल हो गई तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, तुम्हें तो अल्लाह ने पहले भी संभाला हुआ है, पहले भी तुम्हारी टेक केयर की हुई है, तुम्हारे ऊपर बड़े एहसान किए मैं। और फिर उन एहसानात का जिक्र यहाँ पे आता है, आठ एहसानात का, इज औहैना इला उम्मी का मा यूहा, जब वही की हमने तेरी माँ की तरफ जो वही की जाती है, क्या वो वही थी, अनिकदी ही के डाल दो इसको फिर ताबूत, ताबूत में जब मूसा अलैहि सलाम पैदा हुए थे और माँ को डर था कि अभी आके वो साल था जिसके अंदर न्यू बॉर्न्स को जिबा कर दिया, तो माँ को ये डर हुआ कि अभी आते होंगे सिपाही और इस बच्चे को जिबा कर देंगे, तो हमने वही की यानी इल्हाम किया, माँ के दिल में ख्याल डाला कि इसको ताबूत में डाल दो, फकज भी ही फिल यम, फिर डाल दो इसको दरिया में, फल युलकी हिल यम बिस्साहिल, और फिर अब दरिया में डाल दो, और इसके आगे क्या है, अब दरिया को क्या अकल है कि इसको कहाँ लेके जाना है, फिर डाल देगा इसको दरिया, यानी अब अल्लाह ने हुक्म दे दिया दरिया को कि इसको लेके साहिल पे डाल दो। सुभान अल्लाह, वरना दरिया को हम सोचें क्या पता, पत्थरों को क्या पता, लेकिन ये सारे अल्लाह के फर्माबरदार हैं, ये उसी का हुक्म मानने वाले हैं, सारी मखलूक उसकी फर्माबरदार, या खुद हो आदू वुल्ली व आदू वुल्लाह, पकड़ लेगा उसको मेरा दुश्मन और उसका दुश्मन, ये भी अल्लाह का एहसान कि उसी जगह पे जाके वहां पे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम की किफालत हिफाजत कराई, जिससे ही डर था वो दुश्मन मेरा। अल्लाह का दुश्मन कैसे था, वो तो खुद कहता था मैं खुदा हूं, और इसका दुश्मन कैसे, तुम इसके लिए दुश्मन क्योंकि इसी को तो मारने के लिए वो कब से इतने बच्चे जिबा कर रहा था, और आगे भी जाके ये दुश्मनी आ जाएगी, अभी तो इसको रख लेगा। वह अलकई तो आलई का मोहब्बत मिन्नी, और मैंने डाल दी तुझ पर मोहब्बत अपनी तरफ से। ये सब एहसानात है अल्लाह ताला की, कि इतनी मोहब्बत डाल दी थी। इनका चेहरा ऐसा था मूसा अलैहि सलाम का कि जो देखता था उसको इनके ऊपर प्यार आता था, जैसे कई बेबीज होते हैं ना, आप उनको देखते हैं तो दिल करता है जल्दी से उठा ले, वो इस तरह से मूसा अलैहि सलाम थे। वाली तुसना आला आईनी, और ताकि परवरिश किया जाए आईनी, मेरी निगरानी में, मेरे सामने आपकी परवरिश हो, अल्लाह ताला अपनी निगरानी में परवरिश कराएं आपकी, अल्लाह ताला ने इस तरह से आपको वहां पहुंचा दिया। तो क्या क्या एहसान हो गए अभी तक, कि मूसा अलैहि सलाम की माँ को वही कर दी, वो भी एहसान है, और उनको संदूक में डाल के दरिया में डाल दिया और वहां से सलामत उनका आना, वो भी एहसान है, और फिरौन के घर में मूसा को पहुंचाना भी एहसान है। वहां पे तो कोई भी जरर नहीं दे सकता, वहां पे तो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि फिरौन की बीवी खड़ी हो गई कि मैंने नहीं इस बच्चे को कुछ होने देना, ये इसको तो मैं पालूंगी, ठीक है, तो वो एहसान है। इनके ऊपर मोहब्बत डाल देना ये एक और एहसान है, और माँ की आंखों को ठंडा कर देना ये भी एहसान है, क्योंकि आगे क्या आता है, इस तमशी उख्तु का, जब चली जा रही थी तेरी बहन, फतकुल हल अदुल्लुकुम आला मई यकफुलु, ये सारी मूसा अलैहि सलाम की पूरी जिंदगी की कहानी आपके सामने आ गई, कि जब वो उन्होंने कहा कि कोई ये बच्चा किसी का भी दूध नहीं पी रहा, बच्चे ने चीख चीख के रो रो के सारा महल सर पे उठाया हुआ था, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कोई है जो आके इसको दूध पिलाए, ये बच्चा उसका दूध पी ले, उसको बड़ा इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। तो उम्मे मूसा ने बेटी को साथ लगाया हुआ था कि जाके चेक करती रहो ये कहाँ जाता है संदूक, संदूक खुद तो थोड़ी चल पड़ा ना, पानी खुद ही ले जाके संदूक को वहां डाल सकता है, ये तो अल्लाह ताला ही था ना जिसकी मेहरबानी थी कि वहां ले गया। अब वो परेशान है किसको लें किसको हायर करें, तो इस बच्ची ने, इस बहन ने मूसा अलैहि सलाम की कहा कि मैं एक औरत का पता बता सकती हूँ, और फिर वो मूसा अलैहि सलाम की माँ को लेकर आई और उनके दूध को पिया मूसा अलैहि सलाम ने। फरजाना का इला उम्मी का कई तकर्र आइनुहा, हमने लौटा दिया आपको आपकी माँ की तरफ ताकि उसकी आंखें ठंडी हो जाएं, ये भी अल्लाह ताला का एहसान कि माँ की आंखों को, आपकी माँ की आंखों को ठंडा कर दे, दोबारा माँ की गोद दे दी। वला तहजन, और ना वो गम करे, माँ गम ना करे और उसका दिल भी ठंडा हो जाए आपको लेकर। वकतल ता नफसन, और तूने कत्ल किया एक जान को, फनजैना का मिनल गम, तो हमने तुझे निजात दी गम से, इसलिए कि जब कत्ल हो गया था किबती का मूसा अलैहि सलाम के हाथ से, तो ये सूरह कसस में पूरा किस्सा भी आता है, तो उस वक्त इतना उनको गम हुआ था कि ये मेरे हाथ से क्या हो गया, अल्लाह ताला ने निजात दी उस गम से, और तौबा कबूल की। व फतन्ना का फुतूना, और आजमाइश पे आजमाइश आपके ऊपर आई, आजमाइश पे आजमाइश आया, आजमाया हमने आपको, आजमाना के बार बार आजमाइशें, सारी आजमाइशें ही थी ना, कि कभी वो वाले उसी साल में पैदा हुए जिसमें सारे बच्चों को कत्ल करना, पर पानी के ऊपर छोड़ देना किसी बच्चे को, बेबी को संदूक में डाल के, तो अब पानी किधर ले जाए, डूब जाए क्या हो, फिर फिरौन के वहां पे जो वैसे ही दुश्मन था, लेकिन देखें कैसे अल्लाह ताला ने हर आजमाई से निकाला। तो ये इसीलिए ये सूरत मैंने आपको बताया ना इसकी फजाइल में, कि ये भी वो सूरत है जो इंसान को आजाद करती है परेशानियों से, ऐसी मुश्किलात कोई मसाइल है, तो आपको कितनी दिल में सुकून आता है कि जिस रब ने मूसा अलैहि सलाम को ऐसी ऐसी जगहों से बचाया, ऐसी ऐसी जगहों में हिफाजत की, ऐसी ऐसी जगहों में उनको रेस्क्यू किया, वो मुझे क्यों नहीं कर सकता। फलबिस्त सिनीन फी अहली मदियम, फिर तू ठहरा रहा कई सालों मदियन वालों में, फिर वहां पे अल्लाह ने जॉब भी दे दी, बीवी भी दे दी, घर भी दे दिया, जिस वक्त कुछ भी नहीं था, दरख्त के नीचे बैठे हुए थे तो कुछ भी नहीं था आपने, सुम्मा जीता आला कदरिया मूसा, फिर आ गया तू आफ्टर ऑल दिस, तो यहाँ पे एक अंदाजे यानी जो तकदीर में लिखा हुआ था, या दूसरा इसका माना उम्र भी है, कि उम्र के इस हिस्से में जो खास हिस्सा अल्लाह ताला ने चुना था इनको नबुवत देने के लिए, उसमें तू यहाँ आ गया ए मूसा। वो सारी हिस्ट्री उनको याद दिला दी, कहाँ कहाँ अल्लाह ताला ने नहीं तुम्हें बचाया, अब आगे जाने से घबराना नहीं, वो रब तुम्हें वहां पे भी बचाएगा। वस्तनातु का लिनफ्सी, और मैंने तुझको बनाया अपनी जात के लिए, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने आपको चुन लिया सारी आजमाइशों से गुजार के, और मैंने आपको चुन लिया अपने लिए, यानी अपना कुर्ब देने के लिए आपको चुन लिया, अपने इनामात आपको देने के लिए, अपनी इनायात, अपनी रिसालत के मनसब के लिए आपको चुन लिया। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा मकाम दे दिया, इतना बड़ा शर्फ दे दिया अल्लाह ताला ने। तो बहुत सारे लेसन्स इसके अंदर आज हमने देखे हैं, अल्लाह ताला इसको हमसे कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपनी जिंदगी को जो आयात हम पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक से ढाल भी सकें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
بسم الله الرحمن الرحيم
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي.